نعمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد ان مجالس کا جو مطلب ہے نہ ہی کوئی تقریر ہے نہ کوئی بیان بلکہ بہت سی زندگی میں ہم ایسی بہت بہت اہمی چیزیں جو ہماری زندگی کے اندر اس دنیا میں انسان وہ بھول جاتا ہے فراموش کر دیتا ہے اس کی اہمیت نظر میں ذرا کم ہو جاتی ہے تو اس مجالس کے اندر ایسی ہے کہ ان کو آدمی یاد کرتا ہے دوبارہ اور یاد کرنے کے بعد الحمدللہ اپنی زندگی میں عمل کی صورت ملاتا ہے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے یہ ایک اصل مقصد ہے بات کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی جو باتیں ہوں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اسی انداز سے سوچنا چاہیے باتیں تو وہی ساری پرانی ہوتی ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن انسان کو کہ کمزور ہے دنیا میں اس کو بھول جاتا ہے اس کی اہمیت کو بھول جاتا ہے ایسی چیزوں کو بھول جاتا ہے تو یہ ہے کہ بیٹھ کے انسان یاد کرتا ہے چیزیں تو انشاءاللہ پھر انسان کی زندگی میں آتے ہیں فائدہ اٹھاتا ہے انسان ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس انسان کو لانے تک فرمائی ہے کہ یہ سمجھیں کہ زندگی کی ہر چیز کا دار و مدار ہی اس نعمت پر ہے اتنی اہم چیزیں ہوئی اس کے بغیر جو ہے وہ ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے ہر چیز یا عبادت ہو انسان کی یا کوئی معاشی معاملہ ہو یا کاروباری معاملہ ہو یا گھر کا ہو ذاتی ہو ہر چیز میں اس کا دخل ہے کتنی ضروری ہوگی وہ چیز ہر چیز میں اس کا دخل ہے اگر وہ نعمت ہو الحمدللہ تو ہر چیز منور ہو جاتی ہے انسان کی اگر وہ نعمت نہ ہو تو نماز بھی بیکار اس میں کوئی نور نہیں عبادات میں کوئی نور نہیں تلاوتوں میں کوئی نور نہیں زندگی بیکار ہو جاتی ہے بڑے بڑے مکانوں میں بیٹھ کے بھی آدمی پریشان حال رہتا ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے پریشان حال رہتا ہے غریب سمجھتا ہے کہ امیر بہت خوشحال ہے پتہ نہیں کتنی بڑی بلڈنگ ہیں کیا مزے ہیں یہ ہے اس کو کیا پتہ کہ اس کے کیا حالات ہیں مصیبت میں ہی رہتا ہے اس کو اسی طرح غریب تو پھر غریب ہی ہے اس کا کیا حال ہوگا نعمت اس کے پاس تو آئی نہیں بیچارے کے پاس ہے نہیں اس کے بغیر انسان کی زندگی ہے کچھ حاصل یہ نہیں ہم مانتے میں پہلے کہا نا ہم جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں لیکن بس اگنورینٹ ہے اس کے میں بہت سب توجہ نہیں کرتے احساس بھی نہیں رہا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی تھی چل رہا ہے کام چل رہا ہے کتنی بیوقوفی والی بات ہے کیا چیز ہے بلا سوچیں آپ بتاؤں گا سب کہیں وہ یہ تو ہمیں پتہ ہے میں نے پہلے کہا کہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں پتہ ہمیں سب کچھ لیکن جب زیادہ آگے بات کروں گا پھر ہم خود سوچ لیں گے ہم اس کو کتنا عمل کرتے ہیں اس پہ اور نہ کرنے پہ کتنا نقصان ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ذہن میں بات ڈالی ہم اس پہ سوچ رہے ہیں کوئی خوش قسمت آدمی ہوگا جو سن رہا ہوگا الحمدللہ اس پہ چل پڑے گا اس کی زندگی بن گئی تو نہیں کس کا کام آ جائے بات بات دو تو میں خود حیران ہوتا ہوں کہ بعد میں کرتا ہوں تو ایسے اس بات کا اثر اتنا ضرورت مند उस शख्स को होता है कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, वाकई इस आदमी के लिए बात की थी, मुझे पता भी नहीं था मैं बात कर दी है। तो उसके बाद किसी का फोन आ गया, और फोन के बाद तो उसकी जिंदगी बेचारी समझ गई, बदल गई उस बात की वजह से। तो बाज नहीं आप बैठे हुए होते, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या रहा है, उसे ऐसे बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, सुन सुना के चले गए। तो ये तो भाई अपनी अपनी किस्मत की बात है, लेकिन जो भी बातें इन मजालिस में होती हैं ज़रूर इसमें अल्लाह किसी के लिए फ़ायदा रखता है इस चीज़ में, ये सोच रहे हैं। खुशकस्मत लोग ही हैं जो उठाते हैं। अब क्या चीज़ है जो बता रहा हूँ मैं आपको, नेमत कौन सी है जिसके वजह हर चीज़ बेकार है, वो है बरकत। जानते हैं सब, मानते कम है करते कम है, उस पर हर चीज़ अल्लाह की जो भी है इस दुनिया में उसका उसका जो फायदा किस पर होगा, जब अल्लाह की उसमें इबादत हो, घर हो, बाल हो, बीवी हो, बच्चे हो, कारोबार हो, बिल्डिंगें हो, गाड़ियाँ हो, ना हो, हो ना हो, बरकत हो तब भी फायदा हो, बरकत हो और फायदा। तो ये ऐसी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इसके बगैर हर चीज़ बेकार है, बेकार बेनूर है। अब इसकी अहमियत को कभी सोचा नहीं, बस चली जा रही गाड़ी खिंचाई जा रहे हैं, हम नमाज पढ़ने ऐसे ही से सोचे, आपने सोचा इसमें बरकत होनी चाहिए अल्लाह की, बस नमाज पढ़ने आए जी ऑटोमेटिक समझ रहे बरकत हो रही है। बाबी भाई ये ऑटोमेटिक मशीन चल रही है, ऑटोमेटिक मशीन चल रही है। कितने आदमी सोचा होगा कि आज भी हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अल्लाह ताला नमाज तो पढ़ सजदे करेंगे, अगर तेरी बरकत इसमें नहीं होती तो बेकार है, ठोंगे मार के चले जाएंगे, कुछ भी नहीं इसमें। नहीं कोई कह दे पागल है अभी किसी बात कर, पूरा कुरान कह रहे हदीसें कह रहे। तब वो एक बात मुझे शायद याद आ रही है बड़ी अच्छी, पिछले जमाने के जब बुजुर्ग सुनाते हैं, एक आदमी था उसके बेचारे 5-6 बच्चे थे, लड़के थे, बूढ़ा हो गया, कारोबार शरबार था उसका, इंतकाल हो गया, बूढ़ा हो गया तब तो फिर लड़कों के अपने अपने घर बार भी बच्चे तो हवा कतराने लगा, आदमी इसकी खिदमत कौन करे आज का, तो उस जमाने की बात है, आज बाप खांसने लगे तो कहते ले जाओ इसको होम में ले जाए, हाउस क्या होम कहते हैं उसको, क्या जवान घर में बच्चे हैं, औलादें जिनको पाला है, जिनको रखा है, जिनकी खिदमतें की हैं उसने, हराम खाएं उनको पैदाइश के लिए उसने हराम खाएं, मेरे बच्चे खुश हो जाएं, मिसाल दे रहा हूँ ये आज दुनिया का मामला है। और जब बेचारा वो बीमार हो जाए कुछ ऐसे इधर रख दें इसको भाई मिल जाए, हमारे पास तो टाइम नहीं है, अल्लाह अकबर अंदाज़ा लगाएं, ये हमारे इस्लाम की तालीम है। तो गैरों का कहता है कि उसकी खिदमत करो, अगर कोई तुम्हारा पड़ोसी बीमार है उसकी आयादत करो, उसके जाओ उसके पास बैठो, उसको देखभाल करो, उसको खाना दो, या तो वो खून जो अपना है वो भी सफेद हो गया इंसानों को। बच्चे कहते नहीं इसकी निकालो किस तरीके से, बीवी कहती है छुट्टी करो जी इसकी, हो रहा ही नहीं हो रहा भाई ये है, और कहते बड़े हम अपने आप को बड़े अल्लाह वाले और पता नहीं क्या कुछ समझते होंगे, हम तो बड़ी नमाज पढ़ते हैं करते। तो उसके विचार साहब बच्चे सब कन्नी कटाने लगे कि भाई इसको छुट्टी करो, उसमें एक समझदार बच्चा अच्छे भी तो बच्चे होते हैं ना बीच में, जिन्हें एहसास भी होते हैं। तो उस विचार को बुढ़ापा छा गया तो उस सब की नज़र होती है जायदाद भी होती है कि भाई ये मकान मैं लूँगा, ये दुकान मैं लूँगा, ये लूँगा। तो उन्होंने कहा जी चलो बाप तो मरने वाला है, बंटवारा कर लेते हैं, फारिग करें इसको, तो इसने हिलना जुलना भी नहीं है, तो हम तो अपने अपने सीख चीज लेते हैं बाप से। अब क्या था जान? वो बाप बेटा उसको देख रहा, वो उसको देख रहा, वो उसको देख रहा, माल लेने के लिए किसी में जरूरत नहीं कि मैं अपने घर रख लूँ बाप को, नहीं बाप को जाकर मुलाकात कर लूँ, उसके हाल पूछ लूँ, मतलब वो तो काम चले। ये बड़े हिसाब हैं आखिरत के अंदर दोस्तों, बड़े हिसाब हैं इसके। बस ना वो बांटने लगे, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, तो बांटना तो बाप भी सुन रहा, सब कुछ देख रहा उसने, बच्चा बहुत होशियार। उसने कहा देखो आप सौदा करते हैं, बंटवारा तो हो ही रहा है, क्या सौदा करें, तो मान जाओगे जो मैं लूँगा, कहता हूँ क्यों तू क्या लेगा, कितना हिस्सा लेगा तू, क्या है तो सबसे छोटा है फला है। उसने कहा बता दो, कहता भाई ये मेरा जिस हिस्सा है ना सारा मैं आपको दे देता हूँ, मुझे बाप दे दो, बाप दे दो मुझे, मुझे बड़ा बेवकूफ आदमी है, पैसे भी हमें दे रहे हो ये लेके भी जा रहा है खड़ा, इसकी तो और मुसीबत पड़ेगी। हाँ बड़े बड़े खुशी से आप ले रहे हैं ना आप, हमें इस पर साइन कर दें, उसने यही साइन दे, बाप लेके घर चला गया बेचारा। अब उसने खिदमत शिदमत की, बाप की बाप था उसका, मगर आखिर बेचारे की मौत आ गई, इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो बेटा तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, मैं तुझे कुछ नहीं दे सका, जो तेरे हिस्से में था वो भी तुमने दे दिया, तुमने जायदाद की तरफ नहीं देखा। एक नसीहत कर जाता हूँ तुझे अपने तजर्बे से कि जिंदगी में एक चीज़ को याद रखना कि अल्लाह की बरकत को मत भूलना। बस एक क्या उसने इंतकाल कर दिया, बच्चे जहन में आ गई बात। अब वहाँ सब कुछ तो था ही नहीं, फख्र फाका शुरू हो गया बेचारे के, बीवी बच्चे उसके भी थे, बीवी लड़े बच्चे भी लड़े, तो खोया सोया तो ख्वाब में नजर आ गया बाप आया, क्या बेटा तू बहुत परेशान है, तेरे हालात खराब है, या फलां जगह पे दरख्त दरख्त को खोदना उसके नीचे एक खजाना है वो ले ले। तो उसको तो बाप की नसीहत याद थी, उसके अब्बा मैं चला जाता हूँ उसमें बरकत है खजाने में, कहते हैं बरकत नहीं है, कहता मैं तो नहीं लेता, फिर तुमने खुद कहा था। सुबह हो गया उसने बीवी को बताया क्या बात, कैसे ख्वाब देखे, तेरा दिमाग खराब हो, बरकतों के चक्कर में पड़ा, यहाँ तो रोटी नहीं है, और तो कमजोर होती बेचारी, कहता नहीं बरकत नहीं मत कभी नहीं। फिर उसको दूसरे दिन ख्वाब नजर आए कि फलाना जगह बेटा इस तरह है कैसे हैं, जा तू वहां से ले ले। उसने कहा बाबा बरकत है, कहते बरकत तो नहीं, कहता वो भी नहीं मिले तो ना। फिर तीसरे दिन उसको ख्वाब नजर आए, कहता फला जगह जाए, रियाल कह लें रुपया कह लें पाउंड कह लें, एक जो हो एक पाउंड ही समझ लें कि वो पढ़ा है वो ले ले। कहता अब बरकत है, कहते बरकत बहुत है, कहता बस काम बन गया। ऐसा यकीन हो जाए ना आदमी, अल्लाह की बरकत बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए बता रहा हूँ स्टोरी आज की नहीं, ये पुराने ज़माने का सही किस्सा है जो आया वाकयात के अंदर। वो गया उसने रुपया पकड़ा, जो अल्लाह ताला मदद भी फरमाते हैं जब किसी चीज़ की गाइडेंस करते हैं, तो फिर उसके दिल के अंदर वो चीज़ें डाल देते हैं जहाँ से रहमत के दरवाजे खुलते हैं। वो मज तक अल्लाह हो जैसे अल्लाह हो मखरज, कुरान कहता है कि जो बंदा मुझसे डर जाता है मेरी तरफ खौफ से गुनाहों को छोड़ता है, तो वो मज तक अल्लाह हो जैसे ऐसे ऐसे दरवाजे खोलता हूँ उसके लिए कि वो खुद हैरान हो जाता है। हम यकीन नहीं अल्लाह की बातों, बिल्कुल यकीन नहीं आता, ऐसे ऐसे दरवाजे करता खोलता हूँ कि वो खुद आए, ये कहाँ से पैसे आ गए, अरे ये कारोबार मुझे कैसे मिल गया, अनहोनी चीज़ों से उसको इतलात आती हैं, उसको अल्लाह मिलती हैं चीज़ें। तो जब पौन मिला तो अल्लाह ने उसके दिल में ख्वाहिश भी पैदा कर दी, वो ख्वाहिश क्या थी कि मछली खाएं। एक आदमी होता है ना दिल में जज्बे रखे होते हैं, यार मेरे पास पैसे हैं तो मैं ये खाऊंगा, जैसे बच्चे के रमजान में करते हैं ना, किसी बच्चे को आप रोज़ा रखा दें तो उसके दिल में होता है रोज़ा खोलूंगा तो बस मैंने ये खाना है, बर्गर खाना है, मैंने फलां खाना है। तो जैसे ही रोज़ा खुलता है माँ बाप पूछते तुमने क्या खाना, मुझे बर्गर दो बस। तो ऐसी इंसान की ख्वाहिशात होती है, उसने कहा गया पैसे पौंड आ गया एक रुपया, बस मछली खाने को दिल तो कर रहा था मेरा, आज तो मछली पका ली, अल्लाह ने ख्वाहिश पैदा किया और लेकिन रुपया पर बाजार में आ गए, तो वहाँ बाजार में हमारे तो मछली ऐसी पड़ी होती है ना भाई, फलां मछली सिंगाड़ा मछली ये ले लो। तो उसने आवाज़ मारी पौंड की जनाब दो, पौंड के एक पौंड के एक बहती मछली ताज़ा मछली, भाई कितनी की बड़ी मछली से देखी, कहता एक रुपया एक पौंड बिल्कुल ताज़ा ये थी, उसने जैसे मुझे दे दो। हो गया घर, उसने बोला भाई आज तो मछली खाएंगे, बीवी ने चलो ठीक है मछली खाते हैं, कुछ तो दिनों के बाद खाना तो मिला था एक रुपये से। उसने जना मस्त काटी बाटी तो उसमें से एक डायमंड निकल आया मछली के अंदर, बहुत कीमती डायमंड था, बादशाह का ज़माना था। उसने कहा ये क्या चीज़, तो मोती लग रहा है कोई, बीवी आया तो कीमती चीज़, कहते छो मैं तो देखता हूँ जाके इसी सुनार के पास चलता हूँ उससे भेज के मैं पैसे ले आते। हाँ जाओ जल्दी जाओ। हो गया सुनार के पास, उन्होंने जब मोती दिखाया वो ये कहाँ से लिया तूने, वो डरेगा ना क्यों, कहता पागल इसका तो बादशाह की तरफ से ऐलान हुआ है कि जो ये मोती ले आएगा उसको खजाने दे दूंगा, जल्दी जा ये तू मिल कहाँ से गया ये मोती। तो जानता था ना सुनार था, वो तो पकड़े मुट्ठी में बागा जना दरबार की तरफ अल्लाह की। उसने कहा मैंने बादशाह से मिलना, उसने बादशाह सलामत आपने एक ऐलान किया था मोती अगर वो मिले आऊँ तो वो मोती तो ले, ये खजाने जितने चाहे तो उठा ले। उसने ये मोती पड़े, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهُ يَجَلْ اللَّهُ کی طرف سے رحمت کر دی اس نے موتی پہ کہا یہ جتنے بھی خرچ رہے ہیں اونٹ جتنا بھی خزانہ لاسٹ کے لے جاتا لے جا سب تیرا ہے مجھے اس کی ضرورت وہ تو جناب سیکنڈ کے اندر وہ تو بادشاہ بن گیا قسمت رہی ہے یہ ہے برکت کس میں برکت تھی ایک روپے میں یہ ہماری زندگی میں ہے یاد رکھ رہے ہیں برا نہ مان لیں ہماری ساروں کی زندگی بے برکتی ہے برکت والوں کے تو معاملات کچھ اور ہوتے ہیں میں آپ کو صحیح بتاؤں ان کے تو معاملات ان کی نمازیں میں کچھ مزہ ہوتا ہے ان کی عبادات مزہ ہوتا ہے برکت جس کے اندر ہوتی ہے بہت الحمدللہ اس کمال ہوتا ہے تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں لیکن بڑا نور ہوتا ہے اس کے اندر بڑا برکت ہوتی ہے ہم نے تو کبھی دعا میں برکت مانگی بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے دیکھ کتنی بڑی چیز ہے تو بھائی برکت جو ہے یہ ہماری زندگی سے نکل چکی ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاملات سارے خراب ہوا اب یہ دیکھ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جس چیز کی جو ضرورت ہوتی ہے انسان کو اللہ نے اسی حساب سے اس کو رکھا ہوتا ہے یہ بھی سن لیں آپ ہوا کی ہمیں سخت ضرورت تھی آپ اتنی ہوا ہے کہ آپ بس لیے جا رہے ہیں ختم نہیں ہو رہی پوری بھرا پڑا ہے پورا عالم ہوا سے آ رہی ہے جا رہی ہے کوئی ہمیں ضرورت تھی پانی کی ضرورت تھی سمندر کے سمندر پیدا کر دیا اللہ آسمان سے سامنے نیچے سے پانی جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ کو پتہ ہے اس کو اتنی ضرورت ہوگی زیادہ اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے تو برکت جو ہمیں پتہ ہے ہمارا کوئی زندگی کا ایسا معاملہ نہیں جس میں برکت کی ضرورت نہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مت سمجھیں کہ برکت کے حصول حاصل کرنے کی ذرائع بہت محدود ہیں لامحدود سبحان اللہ اتنے اللہ نے ذرائع پیدا کی ہیں جس سے ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے کتنے بیوقوف ہیں کہ اتنے ذرائع ہیں اور اتنی قیمتی چیز ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے برکت کا حاصل کرنا اللہ کے فضل سے ہر کام میں ہماری برکت ہو میں پانی پیوں برکت آ جائے گی الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس کو میں ٹچ کروں اور اس میں اللہ کی برکت نہ اترے اتنے ذرائع اللہ پاک نے رکھے ہیں برکت کو حاصل کرنے کے کرنی چاہیے دوست یہ حاصل ہے ہر چیز کا جو سب کچھ ملتا ہے انسان بتاؤں آپ کو کیسے برکت آئے پھر اصول برکت کیسے رکھی اللہ پاک نے تاکہ ہم حاصل کریں آج کے بعد تو آنکھیں تو کھولیں بھی کوئی نماز نہیں پڑھیں گے جس میں برکت نہ ہو کوئی قرآن نہیں پڑھیں گے جس میں برکت نہ ہو کوئی عمل نہیں کریں گے جس میں برکت نہ ہو کوئی کاروبار نہیں کریں گے جس میں برکت نہ ہو کوئی نوکری نہیں کریں گے کسی ایسی عورت سے شادی نہیں کریں گے جس میں برکت نہ ہو ایسا بچہ نہیں پیدا کریں گے جس میں برکت نہ ہو یہ بھی دیکھ لیں بچے کی پیدا کرنے بھی برکت ہے تو دو اصول ہو گئے اللہ کی طرف سے اس دنیا کے اندر یاد رکھیں ایک تو بے برکت چل رہے ہیں مقام عام دنیا سے کر رہے ہیں اور دوسرا کام کیا ہے وہ برکت کے ساتھ چل رہا ہے مثال کے طور پر کوئی کام میں نے کرنا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوں یا تو اپنی مرضی سے مطابق کرتا رہوں میں کر رہا ہوں نوکری کر رہا ہوں جاب کر رہا ہوں گھر کر رہا ہوں باہر کر رہا ہوں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں اپنی مرضی سے اور دوسری چیز کے جو برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی برکت حاصل پھر اس کا اصول جو ہے اس کے مطابق کرنا پڑے گا تو برکت آ جائے گی ابھی ہمارے پہ وہ کیا چیز ہے جس سے برکت آتی ہے دو اصول ہو گئے نا دنیا کے اب ساری دنیا ایک طریقے سے لگی ہوئی ہے اور کر رہی ہے لیکن ایک ہے کہ جس سے ہم برکت آ جائے گی اس میں اس کام کے اندر اس جو اگر اس طریقے سے ہم کریں گے وہ کیا چیز ہے جو ہر چیز میں برکت پیدا کر دیتی ہے وہ کیا چیز ہے وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے سبحان اللہ اللہ کا اللہ میں نے بھیجے اس نبی کو ایسا کہ کوئی میرا مومن جو ہو مجھے مانتا ہو رہا ہے محمد اس کی ہر چیز بابرکت ہو جائے اتنی قیمتی ہو جائے اور برکت والی چیز کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی جو برکت جس چیز میں ہوگی وہ اتنی قیمتی چیز بن جاتی ہے کہ وہ جنت تک آپ کو ملے گی جنت تک ملے گی آپ کو ختم نہیں ہو سکتے جس میں برکت ہوگی یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو قائم دائم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیونکہ اس میں میری برکت شامل ہو چکی ہے اب پڑ گئی بات سمجھ آ گئی کہ کسی فعل کو یا تو ہم خود کر لیں یا اس فعل کو کیسے کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کریں جیسے آپ نے فرمایا. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق وہ کام کریں گے تو برکت والا بن جائے گا. نماز اپنی مرضی سے پڑھنے جیسے آ رہے ہیں ٹھیک, لیکن اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے مطابق ہم نے اس نماز کو ادا کیا اس نماز میں برکت آ جائے گی, اس قرآن میں برکت آ جائے گی. یہ تو عبادت اسی طرح دنیا کا ہر کام, کاروبار ہے, تجارت ہے, دوستی ہے, بیوی, حتیٰ کہ یہ کہ اپنی بیوی کے پاس بھی انسان جا رہا ہے, نکاح کی ہے, جائز ہے سب کچھ, اس میں دو فعل ہیں, مباشرت کرنے میں دو فعل ہیں, ایک تو اپنے طریقے سے, ایک جو نبی کریم کی تعلیم کے مطابق کریں تو کیا ہوگا, اگر ویسے جائیں گے آپ تو کیا ہوگا, بچہ کیا ہوگا, وہ بیکار ہوگا, اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی. لیکن تعلیم نبی کریم کے مطابق جائیں گے وہ جو بچہ ہوگا وہ برکت والا ہوگا. تو چوائس اللہ نے ہمارے پہ رکھ دیا کہ اگر تمہیں ضرورت ہے برکت کی تو اس کام کو کرنے کے لیے ایک ہی چیز کرو. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرنے کے لیے کیا بتایا اور کیسے بتایا ہے. اس فعل کو آپ نے ویسے کر لیا, گاڑی میں بیٹھ گئے آپ, ساری دنیا بیٹھ چلا رہی ہے, آپ بیٹھے, آپ نہیں اٹکے ایک دم, نہیں بھائی اب میں اس گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہے, یہاں دیکھتا ہوں کہ اس میں سرکار کی تعلیم کیا ہے, اس ڈرائیو کرنے کی ہم نے اس کے مطابق گاڑی کو ڈرائیو کر دی, وہ چیز ہی بدل گئی, وہ رنگ ہی بدل گیا. اب وہ ڈرائیونگ کرنا جو ہے وہ عبادت بن گئی آپ کی, وہ لکھا جا رہا ہے فرشتے, اس میں محل بن رہے ہیں, جنت بن رہے ہیں, وہ مستند ہوگی کہ یہ ڈرائیونگ جو آج آپ نے کی ہے ایک گھنٹے کی یا دو گھنٹے کی, اگر ٹیکسی چلائیں گے چار آٹھ گھنٹے کی, وہ ساری کی ساری آپ کی جو ہوگی آخرت کے اندر ایک بہت بڑے انعام کی شکل میں آپ کو عطا کی جائے. فرق کیا ہے کہ ہم جلدی میں کام کر جاتے ہیں, جلدی کرو یار, جی فلاں کر لو, یہ کر لو, تو تامل ہو, آپ مومن ایمان والے ہیں, آپ کا تعلق ہے, آپ کے لیے ایک نبی آئے ہیں, اس نبی سے تعلق ہے, اس جیسا کوئی نبی نہیں آیا. اتنی الرٹ, اتنی محبت کرنے والا کوئی نبی نہیں آیا جیسے سرکار نے سنوائے, انہوں نے ہمارے لیے کتنا کرنا, ہماری ہر چیز کو ایسا بنا دیا کہ اللہ کے دربار میں بڑی قیمتی بن گئی وہ چیز. لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فخر سے کہہ رہے ہیں اللہ پاک قرآن کے اندر کہ یہ جو میں تمہیں نبی بنا کے بھیجا ہے, فخر فرما رہے ہیں, یہ تو تمہارے لیے ایک نمونہ بنا دیا میں نے, تم پہ میں نے کرم کیا ہے. اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ نمونہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کی نقل کرنے سے, جس کی تعلیم پہ عمل کرنے سے ہماری ہر چیز جو ہے الحمد للہ نور نور ہو جائے گی, برکتوں میں ڈھل کے رہ جائے گی, جس چیز میں برکت آ جائے الحمد للہ اس میں کوئی غریب و امیر رہتا ہی نہیں, غریب آدمی کی جھونپڑی میں برکت ہے تو الحمد للہ لاکھوں محلوں سے بہتر بن جاتی ہے, اور لاکھوں محلوں کے اندر اگر برکت نہیں ہے تو کھڈا ہی بن جاتا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, چیخ پکار ہوتی ہے, ادھار ہوتے ہیں, پریشانی ہوتی ہیں, ماتم ہوتے ہیں, دل ٹوٹے ہوتے ہیں, نیندیں غائب ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا اس میں, دیکھنے میں نظر آتا ہے کھوکھلے, کچھ بھی نہیں. تو غربت سے نہ ڈرے آدمی, ان چیزوں سے نہ ڈرے, ان حالات سے نہ ڈرے, پریشانی, لیکن ان سارے حالات کو جب گزارنا ہو تو کیا کرے, تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا فرمایا ہے, میں کیا کروں. بس اتنی سی ایک بات ہے, ہم بھولے ہوئے ہیں, بتائیں سوچیں آج کے بعد پکی زندگی کا اصول بنا لیں کہ جو کام میں کروں گا سب سے پہلے سوچوں گا اللہ سرکار دوستوں نے تعلیم کیا دی اس کام کے لیے, کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں. صحیح مسلم کی حدیث سنا دوں, دو حدیث ہیں آپ کو سنا دیتا ہوں, کہ ایسی معمولی چیز نہیں ہے یہ کہ بھائی کوئی آپ کہیں کہ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے ہم چھوڑ دیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتے ہیں اس حدیث کو, کھانا کھا رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کھانے کو, یہ دیکھیں کھانے کی طرف یاد ہے, ہم آتے ہیں کھانے کے بعد جلدی جلدی مت کیا کرو, کھانے کے بعد کیا کرو کہ جو برتن تمہارا ہے اس کو صاف کرو, بالکل بولو سبحان اللہ, صاف کرو, تو چڑھ جاؤ مربلی چڑھ جاؤ. یہ تعلیم ہے کس کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ, کیا تعلیم ہے. ایسے ہاتھ تو کھڑا کرے جس نے ہاتھ چاٹا ہے, ماشاء اللہ ایک تو ہے, دیکھیں کھانا کھا کے بھی آئے تو ہاتھ کھڑا کر دیا ہے. تو بھائی الحمدللہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, آج اعلان ہو تو کوئی مسلمان عورت مرد نہ جائے گی, کھانا پکانے میں جلدی ہی ہے, دودھ ڈال اس میں, مرچیں ڈالنے میں جلدی ہے, مرچیں ڈال, نمک ڈالنے میں جلدی ہے, اور گھی ڈالنے میں جلدی ہے, اور گوشت بھوننے میں جلدی ہے, ذائقوں میں جلدی ہے, سب کی ماں جو ایک چیز ہے وہ کیا ہے, برکت ہے. جب کھانا کھانے بیٹھتے تمیز ہی نہیں, हमारे नबी तारीख फरमा रहे कि बर्तन जिसमें तुमने कहा इसको चकड़ जा, ठहर जा फरमाए, और ये उंगली जो है तीन उंगली सिखाते हैं वो चाट, इसको चाट। फिर फरमाया क्या प्यारी बात फरमाया सुभान अल्लाह, कहते मैं तो नबी हूं मुझे पता है इन बातों को, इन्नकुम ला तदरूना, हदीस याद आ रही है सही पढ़ूंगा इंशाल्लाह, इन्नकुम ला तदरूना, आगे क्या फरमाया सुभान अल्लाह, फी अय्यि तअमकुम बरका, ये मौलाना सही पढ़ी हदीस, ये हदीस कि तुम नहीं जानते, ये तुम्हारा नबी जानता है, वो सब जानता है जो बता रहा है तुम्हें, यही तालीम तुम्हें देने है, वो सब वाकिफ इन चीजों से बताने है, तुम्हें नहीं इलम कि जो तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज है, सबसे बड़ी चीज इस खाने में नहीं था, बोला क्या ना तदरूना, तुम्हें नहीं पता इस चीज का, तुम नहीं समझोगे, तुम्हें नहीं पता खाने के किस हिस्से किस बोरे के अंदर किस जर्रे के अंदर हकीकत में बरकत रखी थी जो तुम्हें माला माल कर देती वो चीज, तुम्हारा नबी जानता है उसको, तरीका क्या है उस चीज को, उस जर्रों को तलाश ना करो, बस ये समझो कि हर चीज इसमें जो थी बरकत वाली थी, मुझे पता नहीं है, उस बरकत को हसन चाट जाओ, साफ कर दो बिल्कुल उस प्याले को, उंगली को भी चाट लो, पता हो सकता है इसमें इसमें वो सालन जो लगा है इसके अंदर सारी बरकत रखी है, सुभान अल्लाह, जो इन बातों पर अमल करते हैं जिंदगी में बरकत आती है नहीं आती, रोना धुन नहीं होता उनकी जिंदगी, अमल है कोई बस खत्म बुखारी हो ये हो रहे हैं और वो लंबी लंबी चिड़ी बातें, जिंदगी में इस पर अमल कर ले तो इंसान का क्या काम बन जाए, बोले सुभान अल्लाह, ये इलम है मेरे भाइयों, ये इलम हमें इस इलम पे रो में नहीं आते जब तक कि जो इस बात को सुना और बस हो जाए ड्रामे बड़े लंबे चौड़े तरकाब लगा के लंबी तकरीर नारे लग जाए, अंदर से निकले कुछ भी नहीं, एक ये बात पे इंसान पूरा माशरा हमारा, खुदा की कसम खा कहता हूं आज हमारा पूरा माशरा बादशाह से लेके हमारे यानी वजीरों से लेके और चपरासी तक आवाम तक घरों से भी बच्चों से लेके इस एक बात पे अमल कर ले कि हमने बरकत हासिल करनी है, मैं कहता हूं इससे बड़ी कौम बन ही नहीं कोई सकती, सब किससे खत्म हो जाते हैं, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, या मैं पागल हूं, मैंने तो कुरान हदीस से ये समझा, इतनी मुश्किल है ही नहीं हमारे दीन में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, पूरे कुरान को आप पढ़ेंगे फिर कुरान को पढ़ने के बाद तफसीरें पढ़ेंगे फिर बुखारी शरीफ पढ़ेंगे फिर जनाब बहुत आलम की तकी सुनेंगे फिर जाके पता चलेगा हाँ जी हम अब चीज किसी बात पे अमल करें, अगर ये इस्लाम होता तो फिर तो गए हम छुट्टी से, इस्लाम तो ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी अल्लाह वाले के पास मस्जिद में जाएं महफिल में जाएं आप किसी अल्लाह वाले की मस्जिद में जाके बैठें पूरे मुसलमान बन के उठते हैं, तो बड़े तमाम किए हम खुद ही चोर हैं मुनाफी का, हमें जाने ही नहीं था किसी के पास इस अमल अब जाए, इसलिए तभी मैं पहले आपके जमीरों को झंझोड़ है, आपको क्या अपने आप को झंझोड़ है, अब जो तू बात करेगा तैयार होकर बात करना कि तूने अमल करना है इस बात को, ये तकरीर नहीं है बयान नहीं है, क्योंकि ऐसी मजलिस नहीं है मजमा जमा किए जा रहे हैं और नारे लगे उस पर, नहीं ये तो अमल कर लो जिंदगी बन जाएगी, मजा जब है कि आज सुना है आज के बाद जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी, आनी चाहिए नहीं, पूछूं क्या कहा है मैंने ये कहा है कि हमारी जिंदगी के अंदर एक बहुत अजीम नेमत है जिसको हम भूल चुके हैं, जानते सब हैं अमल नहीं है, वो क्या चीज है, बरकत है, उस बरकत को साथ हर चीज में उस बरकत को अल्लाह ने रखी हुई है, इस अल्लाह के नबी ने फरमाया, दूसरी हदीस भी याद आ गई वो सुनाते हैं, वो भी मुस्लिम की हदीस, वो इसी चीज पर है, आपने फरमाया कि वहां क्या फरमाया कि उंगली चाटो और क्या क्यों बर्तन को चाटो, यहां एक और चीज आती है, लाखने फरमाते हैं कि उंगलियों को चाटो खाने के बाद, नहीं हदीस पहले सही है, हाँ पहले सही है हदीस का कि जब कोई खाते हुए इंसान के दस्तरखान पे हम खाना खा रहे हैं, अल्लाह तौफीक दे दस्तरखान पे खाने की बहुत सी चीजें हैं, किस पे खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ऐसे नहीं, जो तरीका खाने का तीन तरीके हैं, या तो भाई उकड़ू बैठ के खाए, या फिर इस तरीके से खाए, या फिर एक टांग ये और इस तरीके से, तीसरा नहीं है, तीसरे खा सको जिस तक खाओ, उल्टे लड़के खा जाओ, खड़े खा लो, नीचे खा लो, मना कोई नहीं करेगा, लेकिन क्या नहीं होगी, ऊंचा बोलो, बरकत नहीं तो क्या फायदा, लाख बीमारी उस खाने की, लाख शुगर बनेगी उसमें, पतंग जाग के अंदर क्या क्या अंदर गुर्दे खत्म कर देगी, गुर्दे फेल कर देगी, क्या बनेगा, जानवर बनेगा। विषय कितना खा जाए, पांच पांच बकरे खा जाए, अपने से बहुत कुछ खा लिया, नहीं सुभानअल्लाह, अगर उसने आधी रोटी भी खा ली, इस तरीके से जिंदगी बन गई इसकी, सेहत बन गई इसकी, क्यों बरकत है उसमें, ये यकीन है आपके इस बात पर, मोमिन है तो यकीन होना चाहिए इस पर, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह सुभान ने ऐसा इंतमाम किया है पूरी कायनात में, लकत काना कि ये जो आ रहा है आदमी, ये बरकतों से भरा हुआ है, अल्लाह रहमत, और कुछ नहीं इसमें, सब रहमतें रहमतें लुटाने आए, ये मेरा नबी जो है, झोलियां भरो, फायदा उठाओ इसके साथ से, जी मतलब है जिक्र अस्कार का, नारे मारना मतलब नहीं है, यहां मैं आपको नारे लगा के और जनाब जुमा कर वाजी हजरत साहब बड़ा जिक्र करते हैं, मतलब ये नहीं, जिंदगी बदलो, मौत सर पर है, सौदे लो अल्लाह ताला से, कीमती बनो मेरी माओ बहनों दोस्तों, कीमती बनो अपनी जिंदगी, ये इसलिए है मजलिस, और इस मजलिस का कोई ताल्लुक नहीं, मेरे हजरत ने तीन यही मुझे फरमाया था कि दो काम तूने करने, खबरदार तू किसी से झगड़ा करे, किसी पार्टी में जाए, फरोही मसाइल में जाए, लोगों को बुरा कहे, बिल्कुल ना ये काम करना, मेरे हजरत जब भेज रहे थे ना मुझे, चार पांच नसीहत करके भेज रहे थे तैयार करके, झगड़ा नहीं करना, फरोही मसाइल नहीं करना, ये मुनाजरे नहीं करने किसी के साथ, और जनाब किसी पार्टी में नहीं आना, किसी सियासत में नहीं आना, दो काम के लिए तुझे भेज रहा हूं, एक जिक्र अल्लाह, एक सुन्नत रसूल अल्लाह, बस दो काम तूने करने, वही मैं करता हूं, चाहे कितनी बड़ी सजा मिल जाए, हैंग हो जाए, फांसी हो जाए, बस दो कामों को ना छोड़ना, अल्लाह तेरे साथ हो, हक पे खड़ा रहना, अभी तक तो खड़ा हूं, सब कुछ हो चुके किसी को क्या तकलीफ है, तो गलत काम कर रहा हूं भाई मैं, बल्कि लोगों की खराक संभाल रहा हूं, लोगों को सही बता रहा हूं, सही मैसेज दे रहा हूं, खुद भी सही हो रहा हूं, जानते हैं हम सब कुछ हैं, ये जानते नहीं थे आप बरकत, लेकिन मजा है ना आज सुनते, ये बात है, मुर्दे हो चुके हैं, इसको जिंदा करो, अल्लाह ताला कहते हैं जिंदगी दो, इसीलिए मजालिस की जाती है, खुशकिस्मत है जो लोग आते हैं, अलहमदा जो बैठते हैं, अल्लाह के महबूब लोग हैं, पसंदीदा लोग हैं, जो हिम्मत करके आते हैं, सुनते हैं ये बातें, सुने फकीर की क्या क्या बातें करते हैं, कैसे, लेकिन गुजारिश ये करता हूं सुनने के लिए ना है, बल्कि किस लिए है, आज की बात आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में आ जाए, चीज जो भी करेंगे किस तरीके से करेंगे, सुन, हाँ दूसरी हदीस सुना रहा था, अल्लाह ने इशारत फरमाते हैं कि भाई पहली चीज क्या है इसमें, हदीस का दूसरा रंग बदलता है, जब आप खाना खाते हैं, दस्तखान में खाना खाते हैं, भोरे गिर जाते हैं, बुरा समझते हैं छोटा बोरा, अब उसके जाती हूँ लफ्ज, बोरे गिर जाते हैं, जर्रा जो होते हैं इंसान के रोटी के या किसी चीज के, चावल गिर गया, तो हम क्या करते हैं, वो तो छोड़ा, हम तो प्लेट भर के आधी खा ली आधी फेंक दी, कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, आधी खाते हैं आधी फेंक देते हैं, लेते जाते हैं शादी में ब्याह जानवरों की तरह खाते हैं, उसकी कोई पिक्चर बना लेना आदमी के, जी मुसलमानों को खाने का तरीका, दिल तो मैं ये करता है फिर टाइटल दूं पूरा, ये जी मुसलमान खाना खा रहे हैं, आज का मुसलमान देखो क्या कोई किस तरह खा रहा है, उधर खा रहा है ना, हाथ धो रहा है ना, पानी पी रहा है, बातें हो रही हैं, नाक में जा रहा है, वो उन्हें खौफ ये है कि ये खत्म हो जाएगा जल्दी, जितना मेरा बारी आएगी नहीं इसकी, इधर खा रहा है उधर हाथ मार रहा है, मैं तो कहीं जाता ही नहीं दावतों में, सुनना मतलब होता यही है, जाता क्या तो इतफाक में मतलब अपनी मैदी की परेशानी है, जाता नहीं हूँ दावतों में, कभी जाता हूँ, लेकिन ये देखें कोई देखे तहमल से बैठ के दुआ मांगे, दुआ मांग के बाद अपने सामने से खाना खाए, सुन्नत के तरीके पर हाथ धोएं, दुआ मांग के तहजीब से खाना खा रहे हैं, पेटी भरना है ना, अल्लाह ताला दो लोगों से भी पेट भर देता है, लेकिन नीयत नहीं भरती आदमी की, वो नीयत जो काम कराती है, ये टांग खा जाऊँ तो ये मुर्गा भी खा जाऊँ तो ये पलट बना जाए तो ये चीज़ भी आ जाएगी, शामी कबाब ना रह जाए, कोई फला चीज़ ना रह जाए, आप लोग मुझे बदलना है अपने आप, हम लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, जो ये बातें सुन ले नेक्स्ट दावत में हरकतें आपने नहीं करनी, चुप करके बैठ जाना, कहीं नहीं जा रहा खाना, तरीके से खाना, कहते हैं भाई हम तो नीचे बैठ के खाएं, कोई बुराई की बात नहीं, वो चीजें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऊंचा करने के लिए आए हैं और बुलंद करने के लिए आए हैं, आज वो हमें लोग कहते हैं इससे तुम नीचे हो जाओगे, हम नहीं आएंगे आपकी दावत में अगर आपने नीचे इंतजाम किया, साफ बात है, ये कहते हैं लोग, हम नहीं आ सकते, क्या ढोंगल जाए आपने, क्या फजूल बातें की। यहाँ वो बरकत तलाश करके, मैं अपनी बच्ची की शादी कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ बरकत है, अपनी बेटी की शादी कर रहा है, लेकिन दुनिया की खातिर वो बरकत को कुर्बान कर देता है, वो तमाशे लगा लेता है, पैसे लगा रहा है, बरकत खत्म, क्योंकि उसको खुश करना है ना हमने आप लोग। बाद लोग कहते हैं खुश ना हो जिसने आना है, जिसने नहीं आना है छुट्टी करे, मैं उसकी बरकत अपनी जाया कर दूँ। हिम्मत आ गई या नहीं आई, अगली शादी ऐसी होगी इंशाल्लाह, बोले इंशाल्लाह। दुनिया से नहीं डरते, बरकतें चाहिए हमें दोस्तों। अब शादी बेटी की आप कर रहे हैं, दुनिया को राजी करेंगे, कहते भाई जी तो शादी हो रही है, इसकी जिंदगी का सवाल है, अगर इसने जाना है आज ये बरकत लेके नहीं गए तो इसको घर में मातम पड़ जाएंगे, तीसरी दिन तलाक हो जाएगी, इसकी मुसीबत आ जाएगी, ये झगड़े सारे उसी के हैं। आप में जो नाराज होता है खुश होता हो, मैं तो नबी तरीके के मुताबिक शादी करूँ, खर्चा कम, अल्लाह राजी, अल्लाह के रसूल राजी, और बरकत आ गई। नाराज कौन होगा दुनियादार, जिनको आप कभी खुश नहीं कर सकेंगे, ऐसे आदमी कभी खुश नहीं होते, करेंगे काम या नहीं करेंगे, काम नहीं किया, हर काम से अल्लाह ताला नहीं फरमाते, जो काम भी हो किस तरह हो बरकत से। अब बताएं मुझे इसमें इस बरकत को हासिल करने का कोई कम रास्ते हैं, कम रास्ते हैं, हर वक्त यही है। मैं सोने गया, सोने जाना था आदमी ने, अब दो रास्ते हैं, सो जा कुछ भी नहीं, शैतान है, हाँ हदीस तो खत्म हो, तो वो गिरा तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या करो, याद रखो जब कोई चीज नीचे गिर जाए मत छोड़ो, क्यों, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, इस हदीस में वही बताया अल्लाह ने, इन लहुम ला तदरून, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता क्या कि जब तुम बोरे गिरते हैं तो दो चीजें होती हैं, शैतान खाते उसको, शैतान छाल छोड़ता है, वो शैतान के पेट में जा रहा है रिज़्क आपको, पता जी क्या है, बहुत बदबख्ती हो रही है आपके साथ, तो फौरन क्या करो, तुम्हारा काम क्या है, मोमिन का तुम्हारा नबी तालीम दे रहा है तुम्हें, कैसा दीन दिया, ये दीन है, ये बुखारी है, ये मुस्लिम है, ये आलिम बन रहे हैं आप, ये दर्स है अल्लाह का नबी का, इसी के नाम तो इलम है, और क्या इलम, और किस चीज़ का नाम इलम, सारी दरसगाहों में यही पढ़ाया जाता है, लेकिन अफसोस ये पढ़ने के बाद अमल कोई नहीं, अमल कोई नहीं, देखो किस तरह खाते है, देखो जिंदगी तरीका उनका क्या है, कितनी बड़ी पकड़ है, क्या इन में? तो क्या कह, देख मैं जानता हूँ, मैं तुम बता रहा हूँ, ये यही हदीसियाँ बुखारी में आ गई, मुस्लिम में आ गई, वो दाद और इंसानी, वो बहुत बड़ी किताबें बन गई, उससे फिर मजमू बन गए, उससे फिर दसगाहें बन गई, उससे फिर शेख हदीस बन गए, ये हदीस को मजमू यही नहीं है, इसी से बने शेख हदीस, किससे बना उन्होंने, बताने वाले इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो क्या करना है, तुमने ये कहना है कि शैतान से पहले एक काम कर लेना, तुम्हारा नबी बताता है, उसको उठाओ फूंक मारो, मोमिन की फूंक में ऐसा नशा है कि शैतान के पड़ उड़ जाते हैं, पता नहीं चलता, क्या पता वो शैतान कुछ भी नहीं है, ताकत तो बहुत लगता है, लेकिन जब मोमिन की फूंक पड़ी उस जर्रे के अंदर जो कुछ भी होगा जरासीम, ये तो यार नीचे गिर चुका है, इसमें जरासीम आ जाएंगे, इससे तो इन्फेक्शन हो जाता है, अब ये चीजें आ रही दिमाग में, साइंस ही कहती है, हमने देखा अल्लाह ने कहता फूंक मारेगा जरासीम गायब, सुभान अल्लाह, होंगे हम नहीं मानते, साइंस सही कह रही है, साइंस भी तो इलम ही है ना, सही नजर आ रहा है मुझे खुर्दबीन से, जरासीम बागर है उसमें लग गया, जरासीम जमीन पे लगा हुआ था, इसके साथ अंदर में इन्फेक्शन जाएगा, हमने क्या काम करना है, सुभान अल्लाह, आमन्ना व सदकना, मेरे नबी फरमाया फूंक मार इस पे, फूंक मार दो, क्या बन गया, जरासीम गायब, बुजर्रा नूर बन गया, बोला सुभान अल्लाह, क्या बन गया, अगर फूंक ना मारते तो क्या था, वो बीमारी पैदा करता, फूंक मारी तो क्या हुआ, क्योंकि तालीम में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नूर बन गया, और जब नूर जाएगा तो अंदर भी जो जरासीम होंगे वो भी खत्म, पिछली बीमारी में खत्म, माशा, ये बुखारी का दर्स है, दर्स हो रहा है या नहीं हो रहा, अब इसको उठाएं, लंग फरमाए तालीम में फूंक मारो, गड़क कर जाओ, मजे से खा जाओ उसको, जो पड़ा नीचे किसी को हाथ ना लगाने, तो इनकुम ला तदरूना, तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूं, मैं तुम्हारा नबी हूं, फिर वही बात सुनाई आपने, खबरदार हाथ साफ ना करना, हाथ धोना नहीं, बिल्कुल हाथ धोना भी, जब तक कि तुम इसको चाट ना लो, किसी ने चाटा आज खाने के बाद नहीं चाटा, घिन आती है जी, घिन को पता नहीं यार लोग क्या, हम तो उर्दू में घिन कहते हैं ना, यानी पता नहीं क्या, अच्छा नहीं लगता, घिन आती है जी, आप क्या उंगली चाट रही, क्या बदतमीज, क्या बदतमीजी है, और अल्लाह के नबी कहते हैं जिनको बताइए मेरी तालीम है, हमें किसी जगह नहीं, कुछ जो चाहे कहता रहे, हमें तो पता लग गया, बात का नहीं पता लगा, आपके साथ एक आदमी बैठे वो आपको मूछ रहा नक्श रहा है, हम उससे ताल्लुक नहीं, उसकी समझ यही बेचारा क्या करे, लेकिन हमने तो बुखारी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो हदीस पहुंच गई, तो हम उसको बेचारे इग्नोर समझे, उसको बोलना यार क्या कर रहे हो तुम, ये क्या उंगली चाट रहे हो, लोग हंसेंगे यार, सहाबा किताब साथ भी ये हुआ यार, लोग हंसेंगे फला करेंगे, तुमको बेचारा जाहिल है पागल है, वो हमें जाहिल समझ रहा है, लेकिन हम तो दस ले चुके हैं ना सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी का, हम तो एजुकेट हैं, हम हंसेंगे उसके तरफ देख के, नहीं भाई तीन पार बहुत बड़ी ज्यादा चीज है, मजा आ रहा है, देख के तो मजा आ रहा है, करेंगे शाम किसी दावत में, किसी जगह भी, किसी महफिल में, कोई हो, बल्कि ऐसी महफिल में पहुंच जाए जो इग्नोरेंट है, भाई क्या कर रहे हैं, हमारे नबी की तालीम है, हमारे नबी ने समझाया इससे क्या होगा, इससे जरासीम खत्म होंगे, बीमारी खत्म, अच्छा ऐसा होता है, वो कन्विंस हो जाएंगे आपसे, विल डू दैट, नहीं कुछ हो जाएंगे, हम भी करेंगे, खुश हो जाते, अब मेरा तजर्बा है, पढ़ते थे यूनिवर्सिटी वगैरह में तो अल्हम्दुलिल्लाह सुनो तो अमल करते थे, तो काफ़ी दोस्त शुरू हो गए हमारे गैर मुस्लिम, तजर्बा करो, देखो बीमारी खत्म होती है, हमारे नहीं बताया कि इन्फेक्शन खत्म होता है, अच्छा फिनिश दैट, वहाँ काटे चमचे मुझे सब फेंक दे हाथ से खा कर चाटने शुरू कर दिया, तो भाई ये एक ऐसा तरीके है अल्लाह ने बताया कि हम उससे खुद अब कितनी बड़ी चीज़ से महरूम है, आज पता लगा ना हमारी ज़िंदगी में बरकतें नहीं दोस्तों, सुबह से आज शाम तक आज की जो ज़िंदगी गुजरी है पूरी बेबरकत ज़िंदगी थी, इबादत मस्जिद, क्योंकि उसमें नबी का तरीका नहीं था, सुनत नहीं थी सरकार दुश्मन की, मसवाक क्यों करते हैं, सुनत है तरीके है, क्यों इस बरकत है, सुरमा क्यों लगाते हैं, बरकत है, दाढ़ी पे तेल क्यों लगाते हैं, बरकत है, जिसकी दाढ़ी नहीं वो तेल कहाँ लगाएगा बेचारा, माथे पर, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये जिंदगी इंसान की एक अजीब अजीब हिसाब हो जाता है इस आखिरत तक, अल्लाह ताला हम सबको बरकत अता फरमाए, ये आज दिल में आई थी बात कि भाई हम बहुत एम्प्टी जा रहे हैं, हमारी सब चीज़ें बेकार हैं, दौलतें माल सब कुछ ऊँचा करने के लिए एक ही चीज़ है, लगत कान लखन फी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो नबी हमें भेजा है उसके सही ताबेदार बन जाए, उसके फरमाबरदार बन जाए, हर चीज़ में अखलाक में, इबादात में, खाने में, पीने में, घर में, बच्चों में, बात करने में, हर चीज़ में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, आपके यहाँ क्या अमल था, आपने यहाँ कौन सी दुआ मांगी, आप किस तरह सोने गए, आप सो ठीक किस तरह, अब आप ये देखें इंशाल्लाह अगर बात होगी तो मैं बताऊँगा, एक बहुत बेहतरीन बात आ रही है कि आँखों की बीमारी के लिए एक हम सुनत है इसकी, बहुत खूबसूरत बात आ गई इंशाल्लाह जहन में, मैं आपको बताऊँगा कितना अच्छा इलाज है, जिन लोगों आँखें मर्ज है ना, जिनको जो औरतों को देखते हैं आँखों का मर्ज बहुत है ना, आज तक बुढ़े भी करते हैं, जवान भी करते हैं, शादी भी गैर शादी शुदा भी इस मर्ज में बहुत फंसे, आँखें काबू नहीं आती, इंशाल्लाह ऐसा इलाज बताऊँगा काबू आ जाएंगी, और सुनत का तरीका होगा कि सो के जो उठेंगे ना उस तरीके से मैं साबित कर दूंगा आपको, इंशाल्लाह बीमारी खत्म हो जाती है।